for my soul longs, and even faints for you. Lord, hear my heart is satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings.
प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, और मैं परमेश्वर के उस संदेश को जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला और जिनसे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मेरे को परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप तक लेके आऊँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बीते समय में जब परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रही थी, तो मैं माफ़ी और दान के विषय में मैंने देखा, और एक बात मेरे हृदय में आई कि माफ़ करने वाला दिल दान देने वाले दिल से अच्छा होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें मती 5:24 में यही बताता है कि अगर तेरे भाई के साथ तेरा ना इत्तफाका है, कोई समस्या है, तो अपने दान उस वेदी पे छोड़ जा, पहले अपने भाई से मिल और उसके बाद तू हमें दान चढ़ाना। मैं बहुत बार देखती हूँ, हम बहुत से लोग परमेश्वर के लिए बहुत दान देते हैं, बहुत सारी गतिविधियों को करते हैं, लेकिन हम माफ़ नहीं करते हैं। हो सकता है हम कलीसिया में किसी प्रकार की सेवा को कर रहे हों, और या फिर हम सकता है परमेश्वर के लिए कुछ गीत को गा रहे हों, या हम कुछ डोनेशन के रूप में परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हों, लेकिन हमारे अंदर ना माफ़ी आज भी बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ना माफ़ी है, जो अनफॉरगिवनेस है, ये हमारे लिए भी समस्या का कारण है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने हृदय में रखकर कभी भी शांति, चंगाई, तसल्ली का अनुभव कभी भी नहीं कर सकते। बेशक हम करोड़ों रुपए दान कर दें, बेशक हम रात दिन खुदा के भवन में कोई भी सेवा करते रहें, बेशक हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जो कि लगता है लोगों की हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर एक ऐसे मन से प्रसन्न होता है जो दान से अधिक माफ़ करना सीखता है, और जो माफ़ करता है परमेश्वर उससे प्यार करता है। मैं बाइबल में एक दृष्टांत पढ़ रही थी, एक स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। आपको पता है सब लोग उसे मारने के लिए तैयार थे। आज की डेट में अगर किसी से कुछ पाप हो, कुछ गलती हो, जिसका उसके साथ कोई लेन देन नहीं होगा, वो भी उसके विरोध में आके खड़ा हो जाता है। लेकिन बाइबल में उस स्त्री के विरोध में सब लोग खड़े थे, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ था। यीशु मसीह के पास उसने विश्वास किया। यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे अपराध क्षमा हुए। तुम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, वही इस स्त्री के ऊपर पत्थर उठाए। लेकिन बाइबल बताती है किसी ने उस स्त्री को नहीं मारा, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो। पाप की सबने अपनी अपनी एक डेफिनेशन बना रखी है। कोई चोरी करने को पाप कहता है, कोई किसी को गलत रास्ते पर ले जाता है उसे पाप करता है, लेकिन हर एक वो काम जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है अजीजों, वो पाप ही गिना जाता है। उस स्त्री को उस वक्त परमेश्वर से प्यार हो गया। आपको पता है माफ़ कौन करता है? जो प्यार करता है। अगर आप प्यार करते हो तो आप सच में माफ़ करेंगे, चाहे वो आपके अपने परिवार के सदस्य हो, आपके अजीज भाई बहन हो, आपके संगति करने वाले हो, आपके साथ ऑफिस में काम करने वाले हो, आपके बिल्डिंग में रहने वाले लोग हो। क्योंकि जब आपके अंदर प्यार होता है, तो दूसरा पोर्शन जो माफी है, वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आता है। इस स्त्री को यीशु मसीह से उस दिन प्यार हो गया था, क्योंकि उसने देखा सब लोग उसके विरोध में थे, सब उसको सजा देना चाहते थे, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह था जिसने उसके गुनाहों को माफ किया। मेरी बड़ी एक क्वेश्चन था कि यीशु मसीह ने जमीन पर क्या लिखा। मुझे अब समझ में आता है, यीशु मसीह ने हमारे सारे अधर्मों के लेखे को माफ़ किया। मैंने और आपने, हम सब ने पाप किए हैं, वो मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को उसने क्रूस पर दे दिया, ताकि जब मैं और आप उस पर विश्वास करें तो मेरे और आपके पापों की क्षमा हो। जब इस स्त्री को यीशु मसीह के बारे में पता चला, एक बाइबल के अंदर लूका उसका 7, और वहाँ पर एक व्यक्ति है फरीसी, जिसको फरीसी जो है वो यीशु मसीह को अपने घर में दावत देता है। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े आला अधिकारियों को अपने घर में बुलाता है, बहुत प्रकार के खाने के व्यंजन, बहुत बड़ी मेज तैयार करता है, और सबको बोलता है, तुम्हें पता है आज मेरे घर यीशु मसीह आ रहे हैं। किचन में जाके बोलता है, जो उस वक्त का रसोईया होता है उसे बोलता है, जितना अच्छे से अच्छा, लजीज से लजीज जो खाना तुम आज बना सकते हो वो बनाना, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। और सब आला अधिकारियों को इन्विटेशन कार्ड देकर या इन्विटेशन कॉल कर वो सबको संबोधित करता है, और सब लोग उस दिन उस फरीसी के घर भोज पर आते हैं। लेकिन आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति भी वहां आया जिसके पास कोई इन्विटेशन नहीं पहुंचा था। वो स्त्री पता है कौन थी? यही वो स्त्री थी जिसके गुनाहों को खुदा ने माफ किया था, और उस दिन से इसे यीशु मसीह से, आपको पता है, प्यार हो गया था। वो फेल इन लव विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हो गई थी। उसने सोचा, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, ऐसे भोज की सभा में बिना किसी इन्विटेशन के, बिना किसी कॉल के, वो उस सभा में चली गई और आपको पता है एक अनमोल इत्र की शीशी लेके आई, क्योंकि उसके पास उस वक्त वो ही बेशकीमती चीज़ थी। लोग उस फरीसी के घर में तो बहुत सारा धन था, तो इसलिए बहुत सारी तरह चीज़ें उसने रखी थी, लेकिन इस स्त्री के पास सिर्फ एक अनमोल इत्र था। और वो इत्र लेकर आई, ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा, इत्र की शीशी खोली, यीशु मसीह के पैरों पर उड़ेली और अपने बालों से उसे पोंछने लगी, चूमने लगी, आंसुओं से उसके पाँव को भिगोने लगी। पता है क्यों भिगोने लगी? क्योंकि उसे यीशु मसीह से प्यार हो गया था। यीशु मसीह ने उसे जो क्षमा उस दिन किया था, परमेश्वर ने मुझे और आपको भी तो क्षमा किया है, इसलिए तो मैं और आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए मैं और आप भी दूसरों को क्षमा करते हैं। अगर नहीं करते तो इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मात्र शब्दों का परमेश्वर नहीं है वो एक कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस स्त्री ने ना आव देखा ना ताव, पूरी सभा में कितने लोग बैठे, कितने अधिकारी बैठे, कुछ ना देखते हुए परमेश्वर के आगे अपने प्रेम का इजहार कर दिया, अपने उस इत्र की बोतल को उड़ेल कर, अपने आंसुओं को उसके पांव पर डालकर, अपने बालों को टॉवल, महंगा टॉवल नहीं था उसके पास था मेरे बाल, ये सबसे अच्छे, एक लंबे बालों को स्त्री के लिए बड़ा गहना माना जाता है, उसने उस महत्वपूर्ण गहने को भी परमेश्वर के लिए दे दिया। और आपको पता है जो आजू बाजू लोग थे वो क्या कह रहे थे? वो सिर्फ इतना कह रहे थे, क्या सच में ये एक भविष्यवक्ता है? अगर ये सच में एक भविष्यवक्ता होता तो इसे पता होता जो स्त्री इसके पांव को धो रही है वो किस प्रकार की स्त्री है। यीशु मसीह ने ये विचार जान लिया था, इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर किसी के दो कर्जदार हैं, किसी का कम कर्जा है और किसी का ज्यादा कर्जा है, अगर दोनों के कर्जे माफ हो जाए तो तुझे क्या लगता है कौन सबसे जिसने कर्जा दिया है प्यार करेगा? उसने बोला जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है, नेचुरल सी बात है, वो ज्यादा प्यार करेगा। परमेश्वर ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल तूने सही विचार किया, क्योंकि इस स्त्री का जो ज्यादा कर्जा था वो माफ हुआ है। देख मैं तेरे घर आया, तूने मेरे लिए ना तो पैर धोए, ना तूने मेरे लिए अपने आंसू को बहाया, ना तूने मुझे चूमा, लेकिन इस स्त्री ने मुझे चूमा है। आपको बताएं जितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हमारे पापों की क्षमा होती है, जितना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम लोगों को माफ करते हैं, हमारे पापों की भी क्षमा होती है और उनके पापों की भी क्षमा होती है, क्योंकि मनुष्य को पुत्र को यह अधिकार दिया है कि वो पापों की क्षमा कर सके, और मुझे और आपको भी अधिकार है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत सारे आश्चर्यकर्म, बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको पता है क्यों नहीं मिलता? हम बहुत प्रकार की सेवकाइयों को करते हैं, बहुत प्रकार के दानों को चढ़ाते हैं और हमें लगता है शायद ये काउंट होंगे, ज़रूर काउंट होंगे मेरे अजीज़ों, लेकिन तब काउंट होंगे जब हम उन लोगों को माफ़ करेंगे, तब हमारे दान और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख स्मरण की जाती हैं। परमेश्वर ने कहा कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके जो पाप बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? परमेश्वर चाहता है अगर सच में मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो तमाम आज उन लोगों को जिन्होंने आपके विरोध में हो सकता है कुछ बातों को बोलकर, कोई एक्ट को कर आपको खेदित किया है, आपको निग्लेक्ट किया है, आपको रिजेक्ट किया है, उन्हें क्षमा करें। क्षमा करना परमेश्वर का प्रेम ही हमें सिखाता है। बिना परमेश्वर के प्रेम के हम इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते। और आपको पता है इस प्रेम का इसको प्रतिफल क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला पृथ्वी में जहां कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इस स्त्री के कामों का वर्णन वहां किया जाएगा। इस स्त्री को लोग एक व्यभिचारिणी से समझते थे, इसका कोई फ्यूचर नहीं था। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, लिखा है तेरा भविष्य मेरे हाथ में है, जब मैं करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है, और आपका फ्यूचर सिक्योर ब्राइट है। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी पर जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाए। देखिए परमेश्वर ने कितना महत्वपूर्ण भाग उसको दे दिया था। क्यों दिया था? प्रेम के कारण। आज महत्वपूर्ण भाग आपके पास होंगे अगर आप परमेश्वर के प्रेम में होते हुए उन लोगों को क्षमा करेंगे जिन्होंने आपके विरोध में कार्य किया है। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, कई परिवारों में कई लोग अलग कलीसियाओं में तो जा रहे हैं, भिन्न भिन्न सभाओं में तो जाते हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रेयर मीटिंग्स कर रहे हैं, सब गीतों को गा रहे हैं, लेकिन क्षमा ही नहीं है। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने क्या कहा, दान देने वाले दिल से क्षमा करने वाला हृदय अधिक उत्तम है। इसलिए प्रभु ने अपने कलाम में भी कहा है यदि तू अपना दान लेकर मेरी वेदी पर आया है तो वहीं रुक जा, छोड़ दे उस दान को उसी क्षण, जा तुरंत अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और उसके बाद आकर दान चढ़ाना। परमेश्वर इस वचन को अगर लिख रहा है तो इस वचन का कोई अहमियत है हमारे जीवन में? वो हमारे दान से अधिक हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उन लोगों को माफ करें जिन्होंने खेदित किया है। आज अगर आप लिखा है अगर हम एक दूसरे के आगे अपने अपराधों को मान लेंगे, क्षमा करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। कई लोग पता है चंगाइयाँ क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? क्योंकि आज भी उन्होंने अपने मम्मी को माफ़ नहीं किया, पापा को माफ़ नहीं किया, पति को माफ नहीं किया, पत्नी को माफ नहीं किया, भाई को माफ नहीं किया, पड़ोसी को माफ नहीं किया, मैनेजर को माफ नहीं किया, टीम लीडर को माफ नहीं किया, सबके तमाम उन उस समय की घटनाओं को, प्राचीन काल की बातों को अपने हृदय में रखा हुआ है और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम दान भी दे रहे हैं, हम गीत भी गा रहे हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह हमसे ये चाहता है? वो तो कहता है दान छोड़ दे वेदी पर और जा अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। वो भाई आपके घर का हो सकता है, वो भाई आपके बाहर का हो सकता है, वो भाई आपके काम के स्थान पे हो सकता है। बिना परमेश्वर के प्रेम के हम किसी को माफ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। मुझे एक कोरस है जो बहुत अच्छा लगता है, जो अनिल कान जी ने गाया था, ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी, प्यार में उसकी गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात, तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, सबके लिए आया है, दो चार लोगों के लिए नहीं आया, कुछ वर्ग के लिए नहीं आया, कुछ नामों के लिए नहीं आया, वो पूरी मानव जाति के लिए आया है। नीति वचन 14:30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन होता है। जब आप माफ़ करते हैं ना, आपके अंदर एक अद्भुत शांति वास करती है, और जब हम माफ़ नहीं करते ना, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, मुड़बुड़ाते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्रोधित व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि ना माफ़ी हमारे लिए ही एक घाव बन जाता है जो हमारे मन की शांति को, हमारे तन की चंगाई को, मैं सच बता रही हूँ, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, हम जो पुरानी बातों को, ऐसी नेगेटिव बातों को अपने अंदर रख के चलते हैं, वो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स को पैदा करती हैं जिससे हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी बात लिखी है, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, नीति वचन 14:30 में, कि शांत मन ही तन का जीवन होता है। और आपके मन को शांति आज तभी मिलेगी, आप अपना डोनेशन, अपनी आज गतिविधि जो भी कर रहे हैं वहाँ पर पहले देर थोड़ी देर सोचिए, रुक जाइए और जाइए उसको माफ़ कर दीजिए, जाइए उस बहन को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, हमें प्रार्थना भी तो करनी सिखाई है, कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को वैसा ही माफ़ कर। ऑटोमेटिकली मैंने अगर किसी के 10% माफ़ किए हैं तो मेरे भी 10% ही माफ़ होंगे, क्योंकि हमारे पिता ने बड़ी अच्छी दुआ करनी सिखाई है। इतना अच्छा मैथमेटिशियन मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ, जो 5 रोटी 2 मछलियाँ पूरा कर सकता है, उसने इस प्रार्थना में सब कुछ पूरा कर दिया। जितना माफ़ करूँगी मैं किसी भाई या बहन को, उतना ही मुझे माफ़ किया जाएगा। और फिर जब उतना, और लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो 10% माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे 100% माफ़ी मिल जाए। परमेश्वर ऐसा नहीं है आशीष, वो कहता है जा, पहले जा उसके साथ मेल मिलाप कर लें। मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का राज्य सामर्थ का राज्य है, बातों का नहीं है, मात्र शब्दों का नहीं है, वो जो बोलता है वो करता है, बशर्ते हम परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार, परमेश्वर के कलाम के अनुसार माफ़ करें। मुझे पता है ये नामुमकिन लगता है, मुझे पता है कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे देह में एकदम कील के समान गड़ जाती हैं, लेकिन है ना प्रभु का प्यार। देखिए, अगर वो मेरे और आपसे प्यार नहीं करता तो क्या वो मेरे और आपके लिए सजा को भोगता? मेरा आपके लिए ही तो उसने अपने आप को दिया, तो हम क्यों ना, हमें तो ऐसा प्यार भी नहीं करना है कि अपने आप को किसी के लिए दे देना है, लेकिन माफ़ करने का सामर्थ्य प्रभु आज हमें ज़रूर देगा। अगर आज आप माफ़ करेंगे तो परमेश्वर की उन बड़ी गवाहियों को आप अपने जीवन में देखेंगे। मेरे खुद के घर में जब तक मेरे माता पिता के अंदर एक माफ़ी का आत्मा नहीं था, चर्च तो हम जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बिना माफ़ी के कोई बरकत नहीं होती अजीज़ो, बिना परमेश्वर के वचन को सुने बिना कोई आनंद भी हमें नहीं मिलता है। आज मेरे पिताजी के शरीर में आपको पता है चंगाई है। मेरे पिताजी का एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण वो काफ़ी लंबे समय तक बेड पे थे, उनका सब कुछ बेड पे होता था। कारण था मम्मी और पापा के किसी समय में हुआ कोई झगड़ा, जिसके कारण वे एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे थे। दोनों सामने बैठे, एक दूसरे के प्रति दोनों का स्वभाव को बदला और परमेश्वर ने कार्य करना आरंभ किया। आज मेरे पिता बिना किसी ऑपरेशन के, यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, बिना ऑपरेशन के आज मेरे पिताजी चलते फिरते हैं और जो भी देखता है परमेश्वर की तारीफ करता है। आज माफ़ कर दीजिए, आपकी बहुत सारी चंगाइयाँ रुकी हुई हैं, आप चंगे तो होना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ चंगाई का एक रास्ता ये भी है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए उन सब के कामों को, उन सब के अपराधों को जिन्होंने आपके विरोध में किया है, आज आप माफ करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये मात्र शब्द नहीं है, आप टेस्टिमनी देंगे, आप फोन करेंगे, आप हमें ईमेल लिखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खुदा से हो सकता है। जैसे इस प्रोग्राम का नाम भी है कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको माफ करने की कुव्वत देगा, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर से तो हो सकता है। विश्वास कीजिए, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आज आप करेंगे विश्वास करके तो आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे। बड़ी बड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स जो आपकी आज तक नेगेटिव आ रही हैं वो बदल जाएंगी। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो आपके रुके हुए कई समय से, आप उन आश्चर्य कर्मों को होता हुआ देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दान से अधिक माफ़ करें। दान देने वाले दिल से अधिक परमेश्वर माफ़ करने वाले दिल के तलाश में है। परमेश्वर ने भी तो सबको माफ़ किया, क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम सब बातों को परमेश्वर के हाथ में देंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जैसे तूने माफ़ किया, मुझे भी वो सामर्थ्य दे कि मैं अपने अजीज भाइयों को, अजीज बहनों को, जिन्होंने मेरे विरोध में हो सकता है बीते समय में कुछ ऐसी घटनाएँ की थी, खुदा बाप जिन्हें मैं भूल नहीं पा रहा था या भूल नहीं पा रही थी, मैं माफ़ करने वाली हो सकूँ, मैं माफ़ करने वाला हो सकूँ, तो आप देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में कितना काम करेगा। ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है, होते तो मैं जरूर बोलती, लेकिन ये परमेश्वर की वाणी है। जिस परमेश्वर की वाणी ने मेरे घर, मेरे परिवार में काम किया, वो आपके लिए भी करेगा। मैं बताना चाहती हूँ, ऑफिस में हमारे साथ जनरली बहुत ऐसा होता है, हमारे सीनियर आला अधिकारी बहुत सारी कई बार हमें बातों को बोल जाते हैं, लेकिन कोई नातफाका लेके उनके प्रति मत चलिए। कुछ बोल भी थे तो खुदा की उपस्थिति में जाके बोले, प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं इन्हें माफ़ करूँ पिता, क्योंकि वो हमें सामर्थ देता है कि हम माफ़ कर सकें। और जब हम माफ़ करेंगे तो जैसे परमेश्वर ने इस स्त्री के लिए देखे क्या किया, इसके गुनाह माफ़ हुए और इसको परमेश्वर ने एक अच्छा भविष्य दिया, और ये बोला कि जहाँ कहीं मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के कामों का वर्णन किया जाएगा। कोई उस स्त्री को उस सभा में देखने के लिए तैयार नहीं था, सब उसके अतीत की घटनाओं के बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने इसे माफ़ किया, इसके अंदर एक प्रेम आ गया, इसके अंदर एक प्रेम आ गया, इसके अंदर एक नया जीवन आ गया, इसके अंदर एक नए भविष्य के प्रति आशा आ गई और एक नया स्थान प्रभु ने आपको दिया। इसने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक ही तो काम किया, यीशु ने। जब इसको माफ़ी दी, इसे यीशु से प्यार हो गया, और जब इसे यीशु से प्यार हो गया तो इसने ना आव देखा ना ताव, यीशु के लिए जो कर सकती थी वो इसने कर दिया, जो कर सकती थी वो इसने कर दिया, परमेश्वर भी इसके लिए वो किया जो दुनिया में इसके लिए कोई नहीं कर सकता था। इसको परमेश्वर ने वो नाम दिया जो अद्भुत था, जहाँ कहीं प्रचार किया जाएगा इसके कामों का वर्णन किया जाएगा। आज परमेश्वर भी आपसे बातें कर रहा है, आज परमेश्वर भी आपसे कह रहा है, आज परमेश्वर आपको एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। प्राचीन काल की पुरानी बातों को, पुराने लड़ाइयों को, पुराने झगड़ों को, पुराने कलेशों को अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, आपकी मम्मी तो हैं, प्रभु आपको सिखाएगा। भाई ने कुछ बोल दिया है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, आपका ही तो भाई है, परमेश्वर आपको सिखाएगा। और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में अद्भुत काम होते हैं, कैसे आपके जीवन में एक नई बदलाहट आती है, कैसे आपके मन के अंदर शांति आते हैं। आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप बुड़बुड़ाएंगे नहीं, आपका दान भी ग्रहण किया जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी स्वर्ग से मिलेगा। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी, तू माफ़ी का परमेश्वर है, और जहाँ माफ़ी है वो इस बात का साइन है कि वो आपसे प्रेम करता है। तूने हमसे प्रेम किया, इसलिए तूने हमें माफ़ किया पिता परमेश्वर, और तूने हमें ये भी सिखाया कि हम भी तेरे प्रेम में रहते हुए दूसरों को माफ़ करें। हो सकता है आज हमारा कोई बीते समय की घटना, परिवार की घटना, ऑफिस की घटना, या जहां हम रहते उस मोहल्ले की कोई घटना, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में कुछ ऐसी बातों को रखे हुए हैं जो हमें बार बार पीड़ा देती है, बार बार तकलीफ देती है। प्रभु हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं कि तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमारे लिए तूने लहू बहाया, हमारे लिए तूने कोड़े खाए, हमारे लिए तूने परमेश्वर बीमारी से जान पहचान कर ली, हमारे लिए तूने सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। तो खुदा बाप तू आज हमें ऐसी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हम अपने अजीज लोगों को माफ़ करने वाले हो सकें। वो हमारे घर का कोई सदस्य हो सकता है, हमारे कोई ऑफिस का सदस्य हो सकता है, हमारे आजू बाजू का कोई सदस्य हो सकता है, क्योंकि जो माफ करता है परमेश्वर उससे प्यार करता है, और जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसके लिए परमेश्वर सब कुछ अद्भुत करता है। और परमेश्वर आज हम इस माफी की प्रार्थना को करते हैं तो बहुत से लोग जो चंगे नहीं है, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में वो भाई वो बहन जो इस प्रार्थना को देखे वो चंगाई को हासिल कर ले परमेश्वर, कैसे भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर प्रकार की बीमारी उन्हें छोड़ के चली जाए पिता परमेश्वर, और वो जान ले सच में हमने एक दूसरे के आगे अपने पापों को माना, अपनी गलतियों को माना, और खुदा ने अपने वचन के अनुसार हमें चंगाई दी। आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सब बातों में आप बड़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष, बरकत और चंगाई मिली होगी। परमेश्वर के वचन को पढ़िए और इस पर ध्यान रखिए, ये परमेश्वर की वाणी है। निश्चित रूप से आपकी चंगाई, आपका आश्चर्यकर्म आपके जीवन में होगा। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।
Within your presence, I sing beneath the shadow of your wings.
Praise the Lord. कितना सुंदर वचन अभी परमेश्वर की सेविका के द्वारा हमने सुना कि ना माफ करने के द्वारा आज हमारे जीवन में कितनी आशीषें रुकी हुई हैं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवित था तो उसने कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे कसूर माफ़ करे, तुम भी आपस में एक दूसरे के कसूर माफ़ करो, और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ़ नहीं किए जाएंगे। और इसी बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने वो दृष्टांत कहा प्रभु यीशु मसीह ने, कि एक को कर्ज़ देना था 10,000, एक को देना था 100। 10,000 वाले का कर्ज माफ़ हो गया, लेकिन वो 100 रुपये का कर्ज माफ़ नहीं कर पाया। और जब लोगों ने जाकर उस मालिक को बताया, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने उसको बुलवाया और उससे कहा, आए शरीर नौकर, मैंने तेरा 10,000 रुपये का कर्ज माफ़ किया, तो तेरे लिए ये लाजिम था। ये वर्ड लाजिम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं आपको बताऊँ, हम सबके लिए भी आज ये मॉरल ड्यूटी है। कोई इसमें हमारे को चॉइस नहीं है, हमें माफ़ करना ही है, हमें माफ़ करना ही है, क्योंकि उसने हमारे कसूर जो बहुत थे माफ़ करें। और फिर उसने लिया और कहा, इसको कैद खाने में डाल दो जब तक ये सारा कर्ज अदा ना कर दे। तो मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए एक बड़ा लेसन है कि मैं और आप भी जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे कसूर माफ़ करें और एक दूसरे को माफ़ करें, और माफ़ नहीं करेंगे तो जैसा उस नौकर के साथ किया गया, वैसे आने वाले कल में मेरे और आपके लिए भी आग की जलती भट्टी बिल्कुल तैयार है। और जब यीशु मसीह सलीब पर था तो पहला वचन उसने कहा, आए बाप तू इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और आज वो दुआ परमेश्वर मेरे और आपके लिए कर रहा है, जब हम माफ़ नहीं करते। ये 7 कलमें हमारे रोज़ की जीवन की रोटी हैं। अच्छी बात है कि हम इन्हें ईस्टर पे याद करते हैं, लेकिन मैं आज आपसे दरख्वास्त करूँगी, हर रोज़ इन 7 कलमों को याद करें। जब हम माफ़ नहीं करते, जब हम बदला लेते हैं, जब हम आपस में दूसरे के दुश्मनी दिखाते हैं, तो परमेश्वर अपने बाप से हमारे लिए दुआ करता है और कहता है, बाप तू इन्हें माफ़ कर, क्योंकि आज ये माफ़ नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ना माफ़ करने के कारण ही आज हमारी कितनी आशीषें रुकी हुई हैं, जैसा आपने सुना भी। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ, ना माफ़ करने के द्वारा ही आज बहुत से लोग अपने हस्बैंड को या अपने अजीज़ों को इस दुनिया से रहलत करते हुए देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिन्होंने माफ़ किया। और ऐसे लोगों की मैं क्यों बात करूँ, मैं अपनी बात आपको बताऊँगी। मेरे को जब नेफ्राइटिस, आपने शायद पिछले साल में सुना होगा, जब मेरी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, करोड़ों लोग सब तरफ से दुआएं कर रहे थे, अस्पताल में आ आके दुआ करते थे। जब एक रात हमारे अपोस्टल जो हैं बिशप अगस्टस एंथनी, रात को होली फैमिली वाले दुआ करने आए, और दुआ करके जब वो चले गए तो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम करना शुरू किया। और हमने खुदा बाप से कहा, हमने खुदा बाप कहाँ कहाँ से लोग हमारे लिए दुआ करने आ रहे हैं, और तू दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है? क्या कभी ऐसा हो सकता है खुदावंद कि हम 13 दिन से बीमारी के बिस्तर पर हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, बॉडी सुस्ती चली जा रही है, डायग्नोज हो नहीं पा रहा हमें क्या है? खुदाब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू नहीं सुनता, ये गलती मेरी होगी। खुदाब तू मुझे बता, खुदाम यीशु मसीह। और सारी लंबी बात ना बताते हुए आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे अब जो परमेश्वर ने बताया, और नेक्स्ट डे मैंने अपनी मॉम इन लॉ से कहा, मॉम जो हमने कहा था काम करेंगे कोर्ट केस, वो काम नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दो, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब आए, डायग्नोज भी हो गया, उन्होंने कहा कि डायलिसिस होगा, लेकिन हम आपको एक दिन देते हैं क्योंकि आप दुआ करती हैं, अगर आपको दुआ के बाद आराम आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल से डायलिसिस शुरू हो जाएगा। हमने कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब,
हमने पानी का जग लिया, उस पर हाथ रखा, दुआ करी, खुदा बाप हमारे पाप को क्षमा कर। मैंने क्यों ऐसा कहा, खुदा मुझे माफ़ कर दे, और तेरी सामर्थ्य इसके अंदर उतरे प्रभु और मैं चंगी हो जाऊँ। और आपको बताना चाहती हूँ, उसी रोज़ 8 किलो पानी यूरिन के द्वारा मेरी बॉडी से निकला और मैं चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। कुछ नहीं किया मैंने मेरे जीजो, सिर्फ माफ़ किया। और अभी तो मैंने कुछ, हमने एक्शन भी नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ गलत सोचा था। लेकिन जब हमने माफ़ मांग ली तो परमेश्वर ने बीमारी का बिस्तर पलट दिया। आज बहुत सी आपकी आशीषें हैं जो रुकी हुई हैं, मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आप माफ़ नहीं कर पा रहे। चाहे आपका पड़ोस हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके भाई बहन हो, दोष ना लगाएं। लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, वरन आपस में एक दूसरे को क्या कर दो, माफ़ कर दो। और हम माफ़ करेंगे तो आज ही से परमेश्वर एक नया काम करेगा। यह शायर ने भी किताब में लिखा है, पिछली बातों को ना सोचते रहो, कादिम ज़माने की बातों के ऊपर विचार मत करो, देखो मैं आज एक नया काम करूँगा और वो आज ज़हूर में आएगा। यह शायर 43 में पढ़ लीजिएगा। आज परमेश्वर कार्य करेगा और आज आप अभी माफ़ करें, और आप माफ़ करेंगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। इसीलिए केवल माफ़ कर दीजिए कि परमेश्वर ने आपकी कसर माफ़ करे। तो लिखा है तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम भी आपस में एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आज कुछ नहीं चाहते लेकिन ये चाहते हैं कि तू हमें माफ़ी की तबीयत दे, माफ़ करने वाला दिल अता फरमा, दोष के ऊपर दोष ना लगाएं, पुरानी बातों को ना सोचते रहें, वरन आज अपने अजीज़ों को माफ़ कर दें, ताकि वो आशीषें, वो चंगाइयाँ, वो मौज़े जो हमारे जीवन में रुके हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे हो जाएं। पवित्र आत्मा माफ़ करने में सहायता करें, पवित्र आत्मा मदद करें, ताकि आपके प्रेम को दर्शाने वाले हो सकें, और हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आपका नाम महिमा, इज्जत और जलाल पाए। आप ऐसा ही करेंगे, आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दें।